वेद है स्वर में प्रभु का जीवित वचन, सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोता, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से हबक्कूक नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, किंतु इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया, फूलों से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया। भटके कदम को तेरे वचन ने राह पर लाया, फूलों से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया। तेरे बिना था जीवन दुखियारा, पाया तुझे तो पाया जग सारा। तेरे बिना था जीवन दुखियारा, पाया तुझे तो पाया जग सारा। तुझको ही पाने की थी दिल में आस, तुझे जब से चाहा हुआ ये एहसास। फूलों से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया। तू आया खुशी मिली मेरे मन को तू भाया, खुशी मिली मेरे मन में तू आया, खुशी मिली मेरे मन को तू भाया। ऐसी खिली मेरे जीवन की बात, मैं मानू तेरा ही है मुझ पर एहसान। फूलों से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया। अंधियारे पथ पर देखी किरण जो तुझको ही पाया, फूलों से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने और अपने प्रियों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से पुराने नियम के पुस्तकों में से हबक्कूक नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हम सब देख रहे हैं कि परमेश्वर का दास हबक्कूक परमेश्वर से प्रश्न करता है कि दुष्ट लोग फलते और फूलते हैं परंतु धर्मी जन सताए जाते हैं, ऐसा क्यों? इन्हीं पर हम विचार कर रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे अत्यंत दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं। इस समय जब हमारे श्रोता मित्र अलग अलग स्थानों पर बैठकर आपके वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि आज हम जो कुछ भी अपने मन से और आपके वचन में से सुनते और सीखते हैं हमारे हृदयों में कार्य करने पाए, हमसे बोलने और बातचीत करने पाए। हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों की आप सहायता करें। विशेष करके हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो इस समय दुखित हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, बीमार अवस्था में हैं। प्रभु जी, आप उन पर भी दया दृष्टि करें, ताकि हर एक जीवन आप में आनंदित होने पाए, वे आपकी महान चंगाई को प्राप्त कर सकें, न केवल शारीरिक रीति से परंतु आत्मिक रीति से। आप उनके हर एक के पापों को क्षमा करें, आज के वचन के द्वारा हर एक से बोले और बातचीत करें, हम सब की सहायता करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर के दास हबक्कूक के द्वारा से उन बातों को सुन रहे हैं जिसे परमेश्वर ने उसे दिया है। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हबक्कूक से कहा कि जो दर्शन वह देख रहा है उसे वह लिख दे और ऐसे स्पष्ट लिखे कि वे दौड़ते समय भी पढ़ सकें। वह दर्शन में जो कुछ भी देख रहा है वह पूरा होगा। जी हां, कहता है यदि समय भी लगे तो उसे व्यर्थ ना समझा जाए। मनुष्य के जीवन में दो मार्ग होते हैं। एक उसके घमंड का मार्ग है कि वह स्वयं सक्षम एवं योग्य है, और दूसरा उसके विश्वास का मार्ग है कि परमेश्वर उसका उद्धार करेगा। जो विश्वास रखता है वह जीवित रहेगा और अनंत जीवन में प्रवेश करेगा, परंतु घमंडी का विनाश निश्चित ही है। हबक्कूक एक विश्वासी जन था। उसने कहा, मैं गुम्मट में जाकर परमेश्वर के उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा, मैं उत्तर देने वाले परमेश्वर पर विश्वास करूंगा। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना है कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है, और धर्मी जन अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर आपको भी बुला रहा है, और उसके पास आने का साधन केवल और केवल विश्वास है। जी हां, विश्वासी जन विश्वास के द्वारा जीवन पाता है, वह विश्वास के द्वारा चलता है और विश्वास के द्वारा अनंत जीवन में प्रवेश करता है। अपनी क्षमता एवं योग्यता से नहीं, परंतु किसी और की योग्यता से, और वह है प्रभु यीशु जो आपको जीवन देता है। मेरे मित्रों, मैं फिर कहता हूं कि हबक्कूक 2 अध्याय उसके 4 पद में दो मार्ग हमें सुझाए गए हैं। हमारे प्रभु यीशु ने इसी बात को इस प्रकार कहा है, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 13 और 14 पद में लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और जो थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। जी हां, यह सत्य है कि इस संसार में बहुत से लोग चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि आगे विनाश है, परंतु सकरा मार्ग वह मार्ग है जो जीवन देता है, अर्थात जीवन को पहुंचाता है, और उसमें बहुत थोड़े लोग हैं जो चल रहे हैं। चौड़ा मार्ग एक प्रकार से एक बड़े मार्ग के समान है, या यूं कहें कि एक क्लिप के समान है जिसका मुंह बहुत चौड़ा होता है, परंतु आगे चलकर वह बहुत सकरा हो जाता है और विनाश में प्रवेश करता है। मेरे प्रियो, सकेत फाटक भी एक कीप के समान ही है, परंतु उसका प्रवेश द्वार सकेत है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 6 पद में प्रभु यीशु कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यहां पर साफ साफ हमें बताया गया है कि मार्ग सत्य और जीवन यीशु ही है, बिना उस पर विश्वास किए आप कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाते या आप नहीं कर पाएंगे। यह प्रवेश द्वार एक ही मनुष्य तक सकेत है, वही मार्ग है, वह हमें मार्ग नहीं दिखाता है। यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना के पत्री 5 अध्याय उसके 12 पद में, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। मेरे मित्रों, आपके पास या तो जीवन हो सकता है या नहीं। आपके पास या तो प्रभु यीशु मसीह है या नहीं है। आप या तो उसमें विश्वास करते हैं या विश्वास नहीं करते हैं। किसी अनुष्ठान को पूरा करना या शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करना या सभाओं में वेदी के निकट जाना या किसी कलीसिया की सदस्यता लेना आदि से आपके उद्धार का कोई भी संबंध नहीं है। जी हाँ, इस पर आप ध्यान दें कि आपके हरेक प्रकार के रीति विधियों से आपको उद्धार नहीं मिलता है। आपका उद्धार प्रभु यीशु के साथ आपके संबंधों पर निर्भर करता है। यही कारण है कि यह सकेत फाटक है जो कठिन लगता है। परमेश्वर ने संसार को एकमात्र यही मार्ग दिया है, और मुख्य बात तो यह है कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। प्रभु यीशु जो क्रूस पर मरकर फिर से जी उठा, वह सिर्फ आपके और सारे मानव जाति के पापों के लिए मरा, ताकि उसे दोबारा दंड न मिले, अर्थात मुझे और आपको। मेरे मित्रों, यही कारण है कि प्रभु यीशु ने कहा था कि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन में प्रवेश करता है, और थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्या आज आप सकरे मार्ग में चल रहे हैं या उस चौड़े मार्ग पर हैं? निसंदेह यह फाटक सकेत है, सकरा है, परंतु आगे चलकर यह सकरे मार्ग में नहीं परंतु अच्छे मार्ग में खुलता है। कहने का अर्थ है कि आगे जब आप बढ़ते हैं तो यह सकरे मार्ग में नहीं खुलता है, यह अधिकाधिक चौड़ा होता जाता है। सकेत फाटक प्रभु यीशु है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 10 पद में प्रभु यीशु कहता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। ओह, स्वतंत्रता और मुक्ति जो प्रभु यीशु अपनों को देता है, यह बहुत ही बहुमूल्य है। मेरे प्रियो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। शराब पीना और नशा करना स्वतंत्रता का चौड़ा मार्ग प्रतीत होता है, परंतु उनका अंत विनाश में होता है। विश्वासी जो सकेत फाटक से अर्थात सकरे फाटक से प्रवेश करता है, अर्थात प्रभु यीशु में विश्वास करता है कि वह उसका उद्धार करता है, वह उस स्थान में नहीं पहुंचता जो बहुत सकरा है, वह वास्तव में जी रहा है। यदि आप अपने जीवन को देखें तो आपको जीवन चाहिए तो प्रभु यीशु के पास आ जाना है, क्योंकि उसी के पास जीवन है। वह साफ साफ कहता है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और यहाँ पर फिर से कहता है कि प्रभु यीशु जीवन देने के लिए आया और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। मेरे मित्रों, इस संसार में तो हम रहते हैं परंतु उस जीवन के महत्व को नहीं समझते जिसे प्रभु यीशु मुझे और आपको इस संसार को देना चाहता है। वह चाहता है कि लोग जीवन पाएं, अनंत जीवन पाएं, बहुतायत का जीवन पाएं, उद्धार पाएं। क्या आपने इस जीवन को पाया है? हम आगे देखते हैं हबक्कूक के लिए एक दृष्टांत। अब उन मनुष्यों का क्या होगा जिनका मन सीधा नहीं है? उनके लिए हाय, विशेष करके यहूदा को लूटने और नष्ट करने वालों के लिए। ये हाय तीन तीन पदों के पद में लिखी गई है। तो आइए हम पढ़ते हैं हबक्कूक की पुस्तक 2 अध्याय उसके 5 पद में लिखा हुआ है, दाख मधु से धोखा होता है, अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता और उसकी लालसा अधोलोक के समान पूरी नहीं होती और मृत्यु के समान उसका पेट नहीं भरता। वह सब जातियों को अपने पास खींच लेता और सब देशों के लोगों को अपने पास इकट्ठे कर रखता है। लिखा है दाख मधु से धोखा होता है। मेरे प्रियो, वह बेबीलोन के बारे में कह रहा है। उस समय बेबीलोन एक महान राष्ट्र नहीं था जैसा वह दानियल के समय में था। उनका पहला दोष है कि वे दाख मधु से धोखा खाते थे और घमंड से भरे हुए थे। कहता है अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता, वे बाहर जाकर जीतना चाहते थे। वह सब जातियों को अपने पास खींच लेता और सब देशों के लोगों को अपने पास इकट्ठे कर रखता है। उनमें सबको जीतने की लालसा थी। वे देश देश पर आक्रमण करके धन संग्रह कर रहे थे और यहां तक कि अपने लिए दास बना रहे थे। बेबीलोन पहले विश्व शक्ति था। वह संपूर्ण संसार पर राज करना चाहता था। संसार के अनेक राष्ट्रों की यही लालसा रही है। मेरे मित्रों, यहां पर आप ध्यान दें, परमेश्वर उनके शराब पीने के पाप का उल्लेख करता है। शराब पीने की चर्चा कई भविष्यद्वक्ताओं ने भी की है, जैसे आमोस, योएल नबी, नहुम और हबक्कूक। नहुम कहता है कि शराब के कारण अश्शूरों का पतन हुआ और फिर आमोस नबी कहता है कि शराब के कारण ही परमेश्वर ने उत्तरी राज्य को बंधुआई में भेजा और हबक्कूक कहता है कि शराब ही के कारण परमेश्वर बेबीलोन को नष्ट कर देगा। हम कह सकते हैं कि शराब स्वयं ही विनाश ले आती है। शराब पीना बेबीलोन वासियों का स्वभाव था। दानियल नबी की पुस्तक 5 अध्याय में राजा बेलशासर ने बहुत बड़ा भोज किया था और सब शराब के नशे में थे, यद्यपि वे अपने गढ़ वाले नगर में सुरक्षित थे। उसी रात दुश्मन ने नगर में प्रवेश करके उसे जीत लिया। जी हाँ, शराब ही के कारण रोम का भी पतन हुआ। हमने रोम से 22.5 किलोमीटर दूर एक स्थान के बारे में जाना और पढ़ा है, ओस्तिया, जिसमें लोग भ्रमण करने के लिए जाते हैं। वह रोम का एक क्रीड़ा स्थल था। आज वहां केवल खंडहर ही खंडहर है। वह स्थान रोम का एक राग रंग और शराब पीने का स्थान था। मेरे मित्रों, आज सभाओं में और कार्यक्रमों में शराब पी जाती है। शराब पीने वालों का देश कैसे स्थिर रह सकता है? आप एक शराबी के जीवन को देखें कि वह अपने परिवार को नहीं चला सकता है। शराब जिस परिवार में पी जाती है वो परिवार बर्बाद हो जाता है, उसके बच्चे बर्बाद हो जाते हैं और पूर्ण रीति से वे तंगी में आ जाते हैं। यदि एक देश शराब पिए तो उसके देश का भी विनाश निकट है और होना अनिवार्य है। हबक्कूक की पुस्तक में परमेश्वर कहता है कि शराब ने उन्हें घमंडी बना दिया था और वे नरक के सदृश थे। वे सब कुछ निगल जाना चाहते थे। नीति वचन की पुस्तक 30 अध्याय उसके 15 और 16 पद में लिखा है, जैसे जों की दो बेटियां होती हैं जो कहती हैं दे 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 दे, वैसे ही तीन वस्तुएं हैं जो तृप्त नहीं होती, वरन चार हैं जो कभी नहीं कहती बस। अधलोक और बांझ की कोख, भूमि जो जल पीकर तृप्त नहीं होती, और आग जो कभी नहीं कहती बस। हबक्कूक भी यही अभिव्यक्ति काम में लेता है। उसकी लालसा अधलोक के समान पूरी नहीं होती है। वे अपनी सीमाएं बढ़ाना चाहते थे, उन्हें संतोष नहीं था। अब परमेश्वर बेबीलोन पर 5 हाय लगाता है। आइए हम पढ़ते हैं हबक्कूक की पुस्तक 2 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, क्या वे सब उसका दृष्टांत चलाकर और उस पर ताना मारकर ना कहेंगे, हाय उस पर जो पराया धन छीन छीन कर धनवान हो जाता है कब तक, हाय उस पर जो अपना घर बंधक की वस्तुओं से भर लेता है। मेरे मित्रों, पहली हाय है ताना मारने का दृष्टांत, क्योंकि वे पराये धन को लूटते थे। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने धन को बचा करके रखते हैं और दूसरों को लूटकर धनवान बनते हैं। क्या वे सब उसका दृष्टांत चलाकर, लिखा है वे सब, संभवतः बेबीलोन से पीड़ित राज्य हैं। आगे है, हाय उस पर जो अपना घर बंधक की वस्तुओं से भर लेता है। परमेश्वर उन पर हाय डालता है क्योंकि वे दूसरों की संपत्ति लूटते थे। परमेश्वर ने कहा था कि मनुष्य पसीने की रोटी खाएगा, कमाई खाएगा। मेरे मित्रों, यदि आप पसीना बहाकर रोटी नहीं खाते हैं तो कोई और आपके लिए पसीना बहाता है। बेबीलोन चाहता था कि पसीना कोई और बहाए और वे उसका आनंद लें। परमेश्वर बेबीलोन को दंड देगा और वह धर्मी है, वह न्यायी है, वह ऐसा अवश्य करेगा। हबक्कूक 2 अध्याय के 7 पद में हम आगे पढ़ते हैं, जो तुझसे कर्ज लेते हैं क्या वे लोग अचानक न उठेंगे, क्या वे न जागेंगे जो तुझको संकट में डालेंगे। लिखता है, जो तुझसे कर्ज लेते हैं क्या तू उनसे लूटा ना जाएगा, मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा, लूटने वाला भी लूटा जाएगा, जैसे करनी वैसे भरनी। मादी सेना के सेनापति ने फरात नदी को नहरों की ओर मोड़कर उसके थल से नगर प्रवेश का मार्ग बनाया था और रात ही रात में प्रवेश करके उसने बेबीलोन को जीत लिया। मेरे मित्रों, जो व्यक्ति इस संसार में रहते हुए जैसा कार्य करता है, दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, तो वह स्वयं उसमें ही गिरता है। और परमेश्वर इस बात का चेतावनी हबक्कूक के द्वारा दे रहा है बेबीलोन के लिए, यहां तक कि उसके अपने चुने हुए लोगों के लिए जिन्होंने परमेश्वर की ओर मन नहीं फिराया था, कि हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर से दूर होगा दंड पाएगा। मेरे श्रोता मित्रों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यही बता रहा है कि हमें शराब नहीं पीना है, क्योंकि शराब हमारे व्यक्तिगत जीवन को, हमारे शरीर को नाश करता है, यहां तक कि हमारे परिवार को नाश करता है। जिस परिवार में शराब की लत है, आप उस परिवार में जाकर के देखें, क्या उनका परिवार खुशहाल है, क्या वे अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाई लिखाई दे रहे हैं, शायद उनके पति पत्नी के बीच के संबंध भी ठीक नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि शराब परिवार में ही नहीं परंतु हमारे देश में भी विनाश को लाता है। और यहां पर परमेश्वर का दास हबक्कूक यही कहता है कि शराब के नशे के कारण, घमंड के कारण बेबीलोन देश को दंड मिलेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर न्यायी है, वह धर्मी है और वह प्रेमी है। वह कभी भी किसी दोषी को दंड दिए बिना नहीं रहता है। आज बहुत से लोग हैं जो अपने परिवार में इस आदत से लाचार हैं। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप दुखित ना हो, आपके पास उपाय है। प्रभु यीशु कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। जी हां, यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, उसकी निकटता में आएंगे और अपने हर एक गलत कामों के लिए उससे क्षमा मांगेंगे, उससे सामर्थ मांगेंगे कि प्रभु मैं इस आदत से छुटकारा पाना चाहता हूं, मेरे परिवार में मैं शांति चाहता हूं, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में शांति चाहता हूं, मैं आप पर विश्वास करता हूं, आपको अपना उद्धारकर्ता मानना चाहता हूं, आप मेरी सहायता करें। जब इस प्रकार से आप उसे पुकारेंगे तो निश्चय जाने कि वह आपकी सहायता करेंगे, वह आपकी अगुवाई करेंगे और यहां तक कि आपके जीवन में आनंद की भरपूरी देंगे। मेरे मित्रों, आइए आज इस वचन के प्रकाशन में हम अपने जीवन को झांक करके देखें कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। यदि कोई तकलीफ है, समस्या है, प्रभु यीशु के सामने लेकर के आए। यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। आप एक सही परिवार, सही पिता बनकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु आपके साथ में हो और आपकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
टिका हुआ था, घर से कितना दूर गया था, मैं जो पापी भटका हुआ था, घर से कितना दूर गया था, तूने मुझको आन बचाया, तूने मुझको आन बचाया, पाप से मुझको फिर से मिलाया। Amen.
सबसे महान।